उदय ने एकदम सीरियस आवाज में कहा, नंदिनी सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए कि अभिमन्यु आपकी जीजू नहीं है और ना ही वो अब उस काबिल है कि वो इप्सिता से शादी कर सके, इसलिए अब आप भूलकर भी उन्हें जीजू मत कहिएगा, हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और धीमी आवाज में बोली, ठीक है मैं समझ गई। उदय ने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा है जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएं और इप्सिता भी। इससे पहले कि नंदिनी और कुछ बोल पाती, उदय चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। उदय के जाने के बाद नंदिनी सीधे इप्सिता के पास जाकर बैठी और उसे बाकी की सारी बातें विस्तार से पूछने लगी। इप्सिता ने भी नंदिनी से कुछ नहीं छुपाया, वो उसे हर एक बात बता रही थी। नंदिनी बड़े ही ध्यान से उसकी सारी बातें सुनती रही। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में अभिनव पल्लवी और नरेंद्र के साथ खाना खा चुका था। पल्लवी अभिनव पर कुछ ज्यादा ही प्यारी दिख रही थी। तभी नरेंद्र ने अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहा, अभिनव चलिए हमारे साथ, हमें आपको कुछ दिखाना है। अभिनव बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या दिखाना है मुझे? पल्लवी भी अभिनव के साथ कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी नरेंद्र ने पल्लवी को रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हैं पल्लवी, आप यहीं रुकिए। नरेंद्र की बात सुनते ही पल्लवी वहीं रुक गई। नरेंद्र सीधे अभिनव को लेकर राजघराने के उस कमरे में ले गया जहाँ पर राजघराने का सारा खजाना, जेवर और उनकी तिजोरियाँ रखी थी। साथ ही सोने के सिक्कों से वो कमरा भरा पड़ा था। जैसे ही नरेंद्र अभिनव को लेकर उस कमरे में पहुंचा, उसने अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये देख रहे हो ना आप, ये है पैसे और पावर। अभिनव सामने रखे उन सारे जेवरों और खजाने को देखकर दंग रह गया और उसने उस सारे खजाने को देखते हुए कहा, ये सारा खजाना मुझे मिल जाएगा क्या? नरेंद्र ने जैसे ही अभिनव की ये बात सुनी, उसने अभिनव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपको मिल जाएगा, अगर आप राजघराने के राजा बन गए तो समझो ये सब कुछ आपका ही है। हम जानते हैं आपको अभी राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाह रहे हो, इसीलिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं ताकि आपको थोड़ा मोटिवेट कर सके। और आप नहीं जानते, ये राजमहल का सिर्फ 10% है, बाकी का 90% कहाँ है, ये आपको राजगद्दी मिलने के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे ही अभिनव ने ये बात सुनी, उसका मुँह खुला का खुला रह गया और वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं राजा बनने के लिए पूरी जान लगा दूंगा। जैसे ही उसने ये बात कही, नरेंद्र उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और उसने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, ये हुई ना बात, बस यही तो सुनना चाहते थे हम आपके मुंह से। नरेंद्र अभिनव की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी उसने अभिनव का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा हमने आपका बहुत इंतजार किया है और आप नहीं जानते आप हमारे लिए कितनी बड़ी उम्मीद बनकर आए हो। आपको अब सिर्फ उतना ही करना है जितना हम आपसे करने के लिए कहें, और सच में अपने अभी तक जितना कुछ भी सहना पड़ा है वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। आपका हार्डवर्क, आपकी सारी तकलीफें अब दूर हो जाएंगे। अभिनव ने उस सारे खजाने की तरफ देखा, उसकी आंखें चमक उठी थी और उसने नरेंद्र की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा सारा दुख खत्म होने वाला है, अब शायद मेरे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। नरेंद्र ने अभिनव का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर लाकर बोला, अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए, हम कल सुबह बताएंगे कि अब आगे आपको क्या करना है, लेकिन आप ये मत समझना कि ये सब करना बहुत आसान होगा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। और आपको अगर सच में राजा बनना है और राजगद्दी पानी है तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, और हम जो जो आपसे करने को कहेंगे वो सब आपको करना होगा, आप हमारी किसी भी बात को टाल नहीं सकते। अभिनव उसकी बात सुनकर अपनी आंखें नचाते हुए बोला, हाँ पता है मुझे, और वैसे भी जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम्हारी ही तो बातें मान रहा हूँ। नरेंद्र अभिनव की तरफ घूरते हुए देखकर बोला, क्या कहा आपने अभी? अभिनव तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, अब मैं काफी थक गया हूँ, क्या मैं सो जाऊँ? नरेंद्र ने अभिनव का हाथ थपथपाते हुए कहा, ठीक है आप सो जाइए, कल सुबह आपको जल्दी उठना होगा, और अगर अभी भी आपको किसी बात का कोई शक है या आप अगर हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें बुला लेना। अभिनव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। नरेंद्र ने अभिनव को उसके कमरे में जाते हुए देखा और वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, चलो कम से कम अब हमने उसे राजघराने का खजाना दिखा दिया है, तो अब वो कम से कम राजगद्दी पाने के लिए एक्साइटेड तो होगा, वरना वो तो जैसे हम पर एहसान कर रहा हो। और वैसे भी अगर अभिमन्यु को हमें राजा बनने से रोकना है तो ये सब तो करना ही होगा, और अब जब हमारा बेटा हमारे साथ है तो फिर यहीं अब इस राजगद्दी पर बैठेगा, अभिमन्यु नहीं। अभिमन्यु आपने क्या सोचा था, अगर हमें जेल भेज दोगे तो क्या सब कुछ बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और आप अब जाकर भी हमें नहीं रोक पाएंगे और ना ही आपकी माँ। बहुत दिन किया आप लोगों ने इस राजमहल पर राज, अब हमारी बारी है, बहुत जल्दी ये सब कुछ अब हमारे कब्जे में होगा। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, पल्लवी वहीं बड़ी ही बेचैनी के साथ इधर उधर कमरे में टहल रही थी। तभी नरेंद्र ने उसे इस तरह टहलते हुए देखकर पूछा, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है ना? पल्लवी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हम तो ठीक हैं। वो तो बस हम ये पूछ रहे थे कि अभिनव कहाँ है। वो अपने कमरे में सोने चला गया। क्या हम उनसे थोड़ी और बात करना चाहते थे? क्या हम उससे कुछ देर तक और बात कर लें? इतना बोलकर पल्लवी कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। तभी नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पागल मत बनो पल्लवी, हमें अपने टारगेट पर फोकस करना है और आप अपनी ये ममता दिखाने वाली चीज़ों को थोड़ा कम करिए। अगर आप इस तरह उसे इरिटेट करेंगी तो वो यहाँ से भाग जाएगा और फिर ढूंढते रहना अपने बेटे को हर जगह। पल्लवी ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं नरेंद्र, आप जानते हैं ना कितने दिनों बाद हमें हमारा बेटा मिला है, तो क्या आप हमसे प्यार से बात भी नहीं कर सकते? और वैसे भी हम तो बस उसे अपने हाथों से खाना ही खिला रहे थे, वो इतना ज्यादा क्यों चिढ़ गया? नरेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, क्योंकि आप समझ नहीं रही हैं, उन्हें इन सारी चीज़ों की आदत नहीं है और अगर आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगी तो वो इरिटेट तो होगा ही, और रही बात उसे प्यार करने की, तो अब वैसे भी वो यहीं रहने वाला है, तो आप उसे जितना चाहो उतना प्यार कर लेना। लेकिन हाँ, हमारी बात ध्यान से सुनिए, हम कोई भी गड़बड़ नहीं चाहते, इसलिए अगर आपको कुछ भी करना हो तो हमसे पूछ कर करना। अगर आपने अपना दिमाग चलाने की कोशिश की या आपकी वजह से कोई गड़बड़ हुई तो फिर हम क्या करेंगे ये हम खुद नहीं जानते। नरेंद्र ने काफी सख्ती से ये बात बोली थी। वहीं पल्लवी उसकी सारी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। तभी नरेंद्र ने उसे और समझाते हुए कहा, और हाँ, हमारी एक और बात ध्यान रखना, कियारा और अदिति पर जरा ध्यान देना। हम नहीं चाहते कि वे लोग अभिनव के आसपास भी लटकें, उन्हें उसके ज्यादा आसपास जाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कियारा या अदिति में से कोई भी उसके पास जाकर बात करे और फिर अभिमन्यु तक वो बात पहुंचे। आप जानती है ना अपनी बेटियों को, वो दोनों ही अभिमन्यु को कितना मानती है, एकदम अपने सगे भाई की तरह।
पल्लवी ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हमें पता है, और वैसे भी अदिति तो इन सब चीज़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। रही बात कियारा की तो हम उस पर अपनी नज़र रखेंगे। नरेंद्र ने बात खत्म करते हुए कहा, हाँ ठीक है, तो फिर आप सो जाइए और हमें सुबह जल्दी उठा देना। अभिनव जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा उसने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वो किसी का नंबर डायल करने लगा। वो जिसका भी नंबर मिल रहा था उसका नंबर मिलाते हुए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा। उसने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या हुआ, फ़ोन को भी अभी डेड होना था क्या? उसने जल्दी से चार्जर निकाला और चार्जिंग पॉइंट के पास जाकर अपने फ़ोन को चार्ज करने लगा। जैसे ही उसका फ़ोन ओपन हुआ उसने जल्दी से एक नंबर डायल किया। वो नंबर डायल कर ही रहा था तभी उसने अपने पैरों को जल्दी जल्दी हिलाते हुए कहा, कम ऑन यार, पिक अप द फ़ोन, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ मैं तुम्हें और तुम हो के पता नहीं कहाँ गायब हो। अभिनव इतना बोल ही रहा था कि तभी दूसरी तरफ से फ़ोन कॉल रिसीव हुआ और फ़ोन कॉल के रिसीव होते ही अभिनव काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने खुश होते हुए कहा, हेलो पार्टनर, कितनी देर से फ़ोन कर रहा था, कॉल क्यों नहीं उठाई? अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी सुनोगे ना तो तुम्हारा भी दिल मेरी तरह नाचने गाने लगेगा। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ऐसी भी क्या बात है बताओ मुझे? अभिनव ने फ़ोन कॉल पर बात करते हुए कहा, मैं इस टाइम उदयपुर के राजमहल में खड़ा हूँ और पता है तुम्हें, अब बहुत बड़ी चीज़ मेरे हाथ लगी है। मैंने राजमहल का ख़जाना देखा, इतना सारा ख़जाना देखकर मेरी तो आँखें ही चौंधी आ गईं। अगर इस ख़जाने का 1% हिस्सा भी हम यहाँ से उड़ा ले जाएं तो तुम्हें पता है कम से कम 10-20 करोड़ का माल होगा ही, सच में हमारी लाइफ बन जाएगी। फ़ोन के दूसरी तरफ से उसकी ये बात सुनकर कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने हंसते हुए कहा, हेलो पार्टनर, अब कुछ बोलो भी, और मैंने कहा था ना तुम्हें भी यकीन नहीं होगा, और देखो तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई है। अभिनव ने फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहा, मैंने भी जब वो सारा ख़जाना देखा था ना तो मैं भी उतना ही एक्साइटेड हो गया था, और यहाँ पर इतना ख़जाना है कि अगर हमने उसे लूट लिया तो हमारी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी, और अगर तुम भी मेरा इसमें साथ दो तो हम ये काम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? पार्टनर, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ,